नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में फंसे कर्जों में गिरावट आने से उसका एकल आधार पर लाभ दोगुना बढ़कर 2,245 करोड़ रुपए हो गया। बैंक ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 1,085 करोड़ रुपए रहा था। अक्टूबर दिसंबर 2022 की तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 24,154 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में ये 19,454 करोड़ रुपए रही थी। आलोच्य अवधि में बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार आया। इसकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 7.93% पर आ गई, जबकि दिसंबर 2021 की तिमाही में ये 11.62% पर थीं। इसी के साथ बैंक का शुद्ध NPA भी घटकर 2.14% हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 4.04% था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिसंबर तिमाही में बढ़कर 14.45% हो गया, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में ये 13.92% था। विमानन नियामक DGCA ने एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान के दौरान एक यात्री के कथित तौर पर महिला सहयात्री पर पेशाब करने की घटना के संदर्भ में एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उस विमान के प्रमुख पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही उसने कहा कि 26 नवंबर 2022 को हुई इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। DGCA के संज्ञान में ये मामला 4 जनवरी को आने पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया गया था। नियामक ने एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की। ये घटना पिछले साल 26 नवंबर की है। रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र में मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर और अन्य दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के नियमों को आसान बनाया है। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा 2016 में अधिसूचित नियम मार्ग का अधिकार के अनुरूप ये ढील दी गई। गतिशक्ति पोर्टल पर बृहस्पतिवार को नए नियमों की एक प्रति अपलोड की गई। इन नियमों ने फरवरी 2018 में जारी सैन्य केंद्र छावनियों में संचार नेटवर्क का विस्तार करने के लिए साझा संचार टावर और अन्य दूर संचार बुनियादी ढांचा की जगह ली। नए नियम के अनुसार रक्षा भूमि के नीचे या जमीन के ऊपर दूर संचार अवसंरचना की स्थापना के लिए मिले किसी भी आवेदन पर भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियमों 2016 के अनुसार विचार किया जाएगा। नए नियमों में ये भी कहा गया कि दूर संचार विभाग द्वारा बनाई गई अतिरिक्त दशाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। छावनियों के भीतरी क्षेत्रों में दूर संचार अवसंरचना की स्थापना के लिए छावनी बोर्ड को उस संगठन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा जिससे प्रबंधन के तहत रक्षा भूमि रखी गई है। नए नियम के अनुसार नागरिक क्षेत्र के बाहर सभी स्थानों के लिए छावनी बोर्ड को स्टेशन मुख्यालय से NOC लेनी होगी। प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार के बाद वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने शुक्रवार को कहा कि वह इस फैसले की समीक्षा कर रही है और वह आयोग के साथ सहयोग करेगी। गूगल के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी उच्चतम न्यायालय के बृहस्पतिवार के फैसले की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा, यह फैसला अंतरिम राहत देने की मांग तक ही सीमित है और हमारी अपील के गुणदोष पर इसमें कोई फैसला नहीं सुनाया गया। गूगल के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मानकों का पालन नहीं करने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से लगाए गए जुर्माने पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण से अंतरिम राहत नहीं दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है। टाटा समूह के अग्रणी आभूषण ब्रांड तनिष्क ने न्यू जर्सी में अपना पहला स्टोर खोलने के साथ अब अमेरिका में भी अपना कदम रख दिया है। अमेरिकी संसद के सीनेटर रॉबर्ट मेंडेज ने न्यू जर्सी के मशहूर ओक ट्री रोड पर स्थित इस स्टोर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेंडेज ने कहा कि कई आभूषण विक्रेताओं की मौजूदगी वाले ओक ट्री रोड पर तनिष्क स्टोर की शुरुआत कई मायनों में बेहद खास है। तनिष्क ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये स्टोर 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के अलावा हीरो से बने आभूषणों की भी बिक्री करेगा। इस स्टोर की शुरुआत के पहले तनिष्क की अमेरिकी बाजार में ई कॉमर्स मंचों के जरिए मौजूदगी थी। पिछले एक साल की ऑनलाइन मौजूदगी में तनिष्क को खरीदारों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है। तनिष्क की अमेरिकी बाजार में भौतिक मौजूदगी कंपनी की कारोबार विस्तार रणनीति का हिस्सा है। इसके पहले कंपनी ने दुबई में भी नवंबर 2020 में अपना पहला स्टोर खोला था। सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ देने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है। सरकार पहले ही लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की PLI योजना वाहन और वाहन कल पुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर PV मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशिष्ट इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी और चैंपियन बनाना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।